वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वञ्चेऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। तीसरा अध्याय कर्मयोग की व्याख्या भगवान कर रहे हैं, और पिछले सिटिंग में हमने अर्जुन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया, जिसके द्वारा अब अर्जुन भगवान को प्रेरित कर रहे हैं एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजित। तो क्योंकि बीच में एक हफ्ते गैप हो गया था, तो दो श्लोकों का सारांश हम पहले लेंगे जो हमने पिछले हफ्ते लिया और उसके पिछले हफ्ते लिया। तो 35वें श्लोक में स्वधर्म में जीना तथा मरना दोनों ही कल्याणकारी है, ये भगवान ने अर्जुन को बताया। और फिर अर्जुन का प्रश्न कि यदि स्वधर्म में जीना तथा मरना कल्याणकारी है तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो स्वधर्म छोड़ने पर किसी जीव को विवश करती है। और अर्जुन इसके संदर्भ में पाप के विषय में कह रहे थे। तो पाप के अंदर बल बताया अर्जुन ने, और पाप के अंदर वेग है, शक्ति है और गति है। तो अब ये सुनने के पश्चात पाप के विषय में, पाप के बल के विषय में, पाप की शक्ति के विषय में, गति के विषय में, अब भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए केवल एक श्लोक में उत्तर नहीं दे रहे। अर्जुन का प्रश्न एक श्लोक में है, परंतु भगवान का उत्तर अभी कई श्लोकों में इस पूरे अध्याय के अंत तक यही एक विषय को लेते हुए है। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। तो श्री भगवान वाच, क्योंकि अब भगवान पुनः प्रारंभ किए हैं कहना, काम और क्रोध, ये दो कारण हैं व्यक्ति को पाप में प्रेरित करने के लिए। और काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है रजोगुण समुद्भव, सम उद्भव, उद्गम स्थान या उद्भव, उद्भवति जन्म होना कहीं से। तो सम्यक रूप से रजोगुण से जन्म लेते हैं काम और क्रोध, विशेष रूप से काम, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो केवल वहां तक भगवान ने नहीं कहा कि अर्जुन केवल इतना ही प्रश्न पूछा था तो बस इतना ही बताऊंगा, नहीं, आगे उसका स्वरूप बता रहे हैं और पूरे अध्याय के अंत तक बताते रहेंगे भगवान बहुत इलैबोरेटली, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं काम और क्रोध के वजह से, हमारे लिए तो स्वरूप बताया कि ये रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध, ये महाशन, हम उसकी व्याख्या करेंगे, महाशन का अर्थ क्या है, और महापापमा, और इतना ही नहीं, विद्येनम इह वैरिणम, इह का अर्थ है इस भौतिक संसार में, वैरिणम का अर्थ है शत्रु, इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा शत्रु, किसका शत्रु, हम सब का, वो है ये काम। अच्छा, ये काम आप ध्यान में रखिए, ये जो हम लोग रोजमर्रा 9 से 5 काम पर जाते हैं वो नहीं काम बता रहे हैं भगवान, ये पहले से हम क्लियरिफाई कर देते हैं कि ये काम का अर्थ है काम वासना, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं लस्ट। तो प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, काम वासना, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। बहुत पावरफुल वर्ड्स भगवान यूज कर रहे हैं आज के श्लोक में, क्योंकि ये काम का स्वरूप इतना पावरफुल है तो इसके लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए भगवान ने बहुत ही पावरफुल वर्ड्स यूज किए हैं, महाशन, महापापमा, विद्येनम इह वैरिणम, ये सारी चीजें। तो आज हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, श्री भगवान उवाच शब्द की व्याख्या, काम तथा क्रोध की उत्पत्ति, महाशनो एवं महापापमा शब्दों की व्याख्या, इह वैरिणम शब्दों की व्याख्या। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें हर एक श्लोक को इतनी गहराई से समझने की कोशिश करना है कि मानो हम भगवान के मनोभाव को समझें, जो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, या अर्जुन जो श्लोक बोल रहे हैं, और संजय, तो कौन है तीन व्यक्ति भगवद गीता में, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, बाकी धृतराष्ट्र इत्यादि भी हैं, उनका भी कहा गया है धृतराष्ट्र उवाच, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं है। तो यहां पर अब टेक्निकली पूछा जाए तो ये श्लोक कौन कह रहा है, हमें कहां से मिल रहा है, संजय है ना, क्योंकि भगवान तो नहीं बोलेंगे भगवान उवाच। अब जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो अगर मैं किसी को कुछ कहना चाहता हूं तो मैं बार बार तो ही नहीं बोलूंगा, तो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, नहीं, अरे भाई सुन रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, बोल, चुप रहे थोड़ा फिर पता लगेगा। तो फिर यहां पर संजय बोल रहे हैं, इसलिए संजय कहते हैं अर्जुन उवाच, संजय कहते हैं श्री भगवान उवाच। तो पिछले श्लोक से संबंध, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कौन सी शक्ति है जो जीव को पाप के लिए विवश करती है, और आज के श्लोक में भगवान का उत्तर। अच्छा कनेक्शन है, सिंपल कनेक्शन, भगवान का उत्तर। तो श्री भगवान उवाच, अब इस पर हम इतना गौर क्यों कर रहे थे कि ये श्री भगवान उवाच क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें एक पहेली है आज आप लोगों के लिए। देयर इज अ रिडल हिडन इन श्री भगवान उवाच। थोड़ी कठिन जाएगी, परंतु थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं कलयुग में हम लोगों का दिमाग कम है, फिर भी तैयारी करते हैं थोड़ा दिमाग लगाने की, कि पिछले श्लोकों से संबंधित आज का श्लोक और आज के श्लोक की शुरुआत श्री भगवान उवाच से। तो आपको थोड़ा हिंट देते हैं, भगवान का अर्थ है जो पाप एवं पुण्य से परे हैं। एक आपको हिंट दिया कि भगवान पाप और पुण्य से परे हैं, तो कौन गेस करना चाहेगा कि श्री भगवान उवाच का संबंध पिछले श्लोक से कैसे है? केवल श्री भगवान उवाच ये शब्द, ये तीन शब्द जो हैं, इनका संबंध पिछले श्लोक से है। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि संजय, ये संजय का उद्गार है। तो संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो जैसे हमने शुरुआत में कहा कि हमें भगवान के, अर्जुन के और संजय के मनोभाव को जानते हुए श्लोकों को समझना है। तो आगे आपको बताते हैं। अब भगवान, इस शब्द की व्याख्या हमने बहुत बार की है। क्या भगवान शब्द की व्याख्या क्या है? षड ऐश्वर्य पूर्ण, जैसे कि धनवान जो कि धन को धारण करने वाला है, रूपवान जो रूप को धारण करने वाला है, विद्यावान विद्या को धारण करने वाला है। भगवान का अर्थ है भग को धारण करने वाला। भग छह ऐश्वर्य हैं और वान धारण करने वाला। तो अब ये छह ऐश्वर्य, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब श्री भगवान उवाच, एक और हिंट आपको देते हैं कि पिछले श्लोक में जो लाइन थी, पापम चरति पुरुषः, इससे कनेक्शन है। और आपको अभी क्लोज लेके आ रहे हैं पहेली को सुलझाने के लिए कि उससे कनेक्शन है। किसी कोई अनुमान? अथ नहीं, हाँ ओनली भगवान इज एलिजिबल टू कॉमेंट ऑन एस्पेक्ट ऑफ वॉट सिन। ओके, ओनली भगवान हैज द राइट टू ऑब्जेक्ट और कॉमेंट, सॉरी, ऑन दिस। नॉट एग्जैक्टली, लिटिल बिट लॉस, नॉट एग्जैक्टली। ओके, कोई और? हाँ, ओके, अर्जुन इज आस्किंग दिस क्वेरी, सो इनडायरेक्टली अर्जुन, या दिस इज अ गुड कनेक्शन। अर्जुन इज इनडायरेक्टली वॉज ट्राइंग टू पॉइंट आउट दैट, और आस्क कृष्णा दैट आर यू नॉट द कॉज ऑफ वन गेटिंग इन्वॉल्व इन सिन एंड ऑल दैट। सो Yes, but there is something more than to that. तो पहले हम देखेंगे छह ऐश्वर्य, सुंदर रूप, शारीरिक बल, अपार धन संपत्ति, अपार विद्या, नाम एवं यश और वैराग्य। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसे इस प्रकार से समझना है कि इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति पाप और पुण्य में लगता है ये छह चीजों को कमाने के लिए, है ना? या तो वो पुण्य में लगा हुआ है, एक एक अगर हम ले, सुंदर रूप, सुंदर बनने के लिए या तो वो किसी प्रकार के पुण्य में लगा हुआ है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी को सुंदर बनना है तो उसको उर्वशी की पूजा करनी चाहिए, किसी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए शारीरिक बल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो ये सब पुण्य। और कई बार लोगों को यदि उनके द्वारा भी ये सब नहीं मिल रहा है तो पाप के द्वारा हासिल करना चाहते हैं, जैसे धन संपत्ति है, विद्या है, नाम यश है, ये न केन प्रकारेण, चाहे पुण्य या पाप। और आप देखो कि कोई व्यक्ति यदि पाप में भी लगा है तो उसके पीछे ये सारी चीजें हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि इसका कनेक्शन पिछले श्लोक के उस लाइन से क्यों है, पापम चरति पुरुषः। आपको याद है वो पुरुष शब्द का अर्थ क्या था? मनुष्य। पुरुष शब्द का अर्थ हमने क्या समझा था? मनुष्य। क्योंकि पाप और पुण्य केवल मनुष्यों से ही संबंधित है। तो यहां पहेली क्या है कि आपने कभी जानवरों को देखा है कि वो सुंदर रूप, शारीरिक बल, अपार धन संपत्ति, विद्या, नाम, यश, वैराग्य, इनके पीछे प्रयास कर रहे हैं? कभी आपने देखा कि कोई भैंस किसी ब्यूटी पार्लर में जा रही है, या कोई कोई भैंस फेयर एंड लवली लगा रही है? नहीं, वो चाहे अपने पूरे बिरादरी की सारी भैंसों के साथ रह लें जिंदगी भर, फिर भी कभी उनके मन में ये नहीं आएगा कि हम इतने काले क्यों हैं। लेकिन मनुष्य, अरे बाप रे, भगवान ने मुझे काला क्यों पैदा किया? अरे वो काले तो मेरे को क्यों काला पैदा किया? तो फिर ये लगाओ, वो लगाओ, सुंदर रूप, शारीरिक बल। आप देखो जानवर शारीरिक बल, बेचारे कई कई जानवर होते हैं उनके पास ज्यादा शक्ति नहीं होती, लेकिन वो कहीं कोई व्यायामशाला में जाके वर्जिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा मैं भी दिखाऊं उस जंगल के शेर को कि मैं कौन हूं। धन संपत्ति, नाम, यश इत्यादि नहीं। तो ये सारी चीजों के पीछे लगा हुआ कौन है? पुरुष। हम सब मनुष्य लगे हुए हैं। और इसलिए ये देखिए जो आहार निद्रा भय मैथुन है, इनके पीछे जानवर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके बिना ये जी नहीं पाएंगे। तो वो जानते हैं कि कितना किसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो यदि मनुष्य भी केवल आहार निद्रा भय मैथुन तक सीमित रहे तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मनुष्यों की। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन के बाद हमें छह चाहिए, वो चाहे मिले या ना मिले। कई बार तो अपना आहार छोड़ देते हैं ये छहों के पीछे, अपनी निद्रा छोड़ देते हैं, भूख प्यास नींद सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज है कि नहीं। कितने हैं जो सुंदर रूप के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं, विद्या हासिल करने के लिए अपनी नींद भूल जाते हैं या भूलनी पड़ती है उनको, क्योंकि कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो वो टेंशन के वजह से नींद नहीं आती। धन संपत्ति, किसी के पास बहुत धन है तो नींद नहीं आ रही कि इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी, किसी के पास धन नहीं है उसके लिए नींद नहीं आ रही। तो हम देखें कि इसका जो कनेक्शन है वो पापम चरति पुरुष है, कि मनुष्य समाज में यदि कोई पाप कर्म में लगता है तो उसके पीछे कारण ये है। अब देखिए वो लोग भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है ये छह ऐश्वर्य, और वो संपूर्ण रूप से उनके पास है, भगवान के पास ये छह ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से। तो हम मनुष्य भगवान की जब लीलाओं को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उनकी नकल करना चाहते हैं, है ना। तो भगवान ने रासलीला की तो मैं भी अपने एरिया में रासलीला करूंगा। तो भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, तो हम भगवान को इमिटेट करना चाहते हैं। लेकिन देखिए मनुष्यों के अंदर कितना कपट आ जाता है कि वो भगवान को केवल वो पांचवे तक इमिटेट करते हैं। वैराग्य में इमिटेट नहीं करते, उसमें इमिटेट नहीं करते। तो उससे समझ में आता है कि जब व्यक्ति के अंदर, जब मनुष्यों के अंदर पापम चरति पुरुषः, ये लोभ और काम वासना, ये सारे जो पांच चीजें हैं, भगवान से अलग होकर प्राप्त करने की जो कोशिश करता है उसे क्या कहते हैं, काम। इसलिए आज के श्लोक का जो पहला शब्द है भगवान वाच, वहीं से समझ में आ जाता है संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं और हम सबको बोल रहे हैं कि यदि हम भगवान की शरण चले जाएं जो ये गीता हमको सुना रहे हैं, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब नष्ट हो जाएगा हमारे जीवन से। तो अब कैसे हम समझे श्री भगवान उवाच, क्योंकि भगवान ही षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और इस संसार में जो भगवान बनना चाहता है वो फिर पाप में लगता। तो जो भी भगवान की तरह सुंदर होना चाहता है, धनवान होना चाहता है, विद्यावान होना चाहता है, यशवान इत्यादि होना चाहता है, वो क्या कर रहा है, उसके लिए उसको पाप करना पड़ता है, और फिर उसका जो चक्र चालू होता है जो भगवान ने और जो अर्जुन ने पिछले श्लोक में पूछा। तो अब अर्जुन का जो प्रश्न था वो भी इसी प्रकार का था कि भगवान अब दुर्योधन के पास और मेरे पास, हम दोनों के पास ये नहीं कि खाने के लाले हैं, नहीं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को मारने पर क्यों उतारू हो रहे हैं, क्यों दुर्योधन पूरे सेना को लेकर मारने पर उतारू हो रहा था, क्योंकि उसे केवल दो वक्त की रोटी नहीं चाहिए थी, उसको वो यश चाहिए था, उसको ऐसी धन संपत्ति और ऐसा साम्राज्य चाहिए था कि पूरा विश्व पूरी सृष्टि देखे कि हां ये है वो। तो यहां से समझ में आता है कि आजकल भी आप देखो, इसलिए प्रभुपाद प्रथम स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि कलयुग में अधिकतर मनुष्य मरेंगे ज्यादा खाकर। Human beings in Kaliyuga will die of overeating, not undereating. More will die of overeating and all the problems. So basically what Prabhupada meant, overeating, not just in regards to food, but in regards to greed. Greed for so many things. Greed for name, prestige. Greed for wealth. Greed for, you know, power. Greed for, you know, knowledge and all that stuff, unnecessarily. तो इसलिए श्री भगवान उवाच से समझ में आता है कि भगवान जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है इन पाप और पुण्य से परे हैं। तो भगवान यहां पर हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि हम कैसे उनकी शरण में आकर काम और क्रोध के ऊपर जा सके। तो अब शुरुआत करते हैं भगवान, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो अब ये दो लाइन का कनेक्शन है, और कनेक्शन बहुत सिंपल है समझना, क्या है? भगवान ये बोल रहे हैं कि काम और काम से उत्पन्न होता है क्रोध। तो अर्जुन का प्रश्न, तो बताइए काम कैसे उत्पन्न होता है? तो भगवान कहते हैं रजोगुण से, रजोगुण से काम उत्पन्न या काम वासना उत्पन्न होती है। तो ये यहां पर इसका सीक्वेंस है कि रजोगुण से काम, और काम पूरा कभी नहीं होने वाला है। ये काम वासना जो हमारे अंदर है ये कभी पूरी नहीं, ये कभी काम वासना किसी की संतुष्ट नहीं होने वाली। इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि काम वासना कभी संतुष्ट नहीं होगी तो वो क्रोध में परिणित होने ही वाली है। इसलिए पहले से ही भगवान ने कह दिया है काम एष क्रोध है एष, दिस लस्ट विल नेवर बी सैटिस्फाइड एंड डेफिनेटली वन हु गोज टू सैटिस्फाई दिस लस्ट विल बिकम एंग्री। आपको याद है दूसरे अध्याय में हमने ये दो श्लोक लिए थे, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। और भगवान क्या कहते हैं आगे, कामात क्रोधो विजायते, और फिर क्रोधो भवति सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो उसके अंदर भी भगवान ने यही कहा कि विषय वस्तु पर ध्यान करने से उसके प्रति आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध। काम से क्रोध कैसे हो सकता है, बीच में ये भगवान को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोई पूछ सकता है कि अरे भाई अचानक ये ध्यान करने से आसक्ति, आसक्ति से काम, फिर अचानक ये क्रोध की तरफ टर्न क्यों ले लिया भगवान? क्योंकि दिस गोज विदाउट सेइंग दैट लस्ट विल नेवर बी सैटिस्फाइड एंड विल नेवर सैटिस्फाई द लस्टी पर्सन। लस्ट विल नेवर बी सैटिस्फाइड एंड लस्ट कैन नेवर सैटिस्फाई द लस्टी मैन, एंड हेंस इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टर्न इनटू एंगर, और फिर क्रोध के पश्चात प्रणश्यति इत्यादि। तो इसलिए ये कनेक्शन है इसका। तो एक उदाहरण से हम समझेंगे कि अब कोई कहेगा कि भाई इसमें कल्प्रिट कौन है, काम वासना कल्प्रिट है? नहीं, भगवान शुरुआत कर रहे हैं कहीं कहां से, रजोगुण से। तो यहां पर हम एक उदाहरण लेंगे, यहां पर दूध है और दही है। तो दूध और दही के उदाहरण से समझेंगे कि ये कैसे संभव होता है। सबसे पहले दूध की तुलना की गई है शुद्ध कृष्ण प्रेम से, अंग्रेजी में जिसे कहें प्योर लव। लव कैन ओनली बी फॉर द सुप्रीम लवेबल ऑब्जेक्ट दैट इज कृष्ण। एनीथिंग एल्स गोज ऑन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इन द नेम ऑफ लव इज नॉट लव। तो यहां पर शुद्ध कृष्ण प्रेम, उसकी तुलना दूध से की गई है। तो अब दही की तुलना किससे की गई है, काम वासना से। वैसा ही दिखता है दूर से, सफेद सफेद है ना, वैसा ही दिखता है। इसलिए आजकल वो लव के नाम पर जो कुछ चल रहा है, और उनको लगता है, इसलिए एक हमारे सन्यासी कह रहे थे कि वेस्ट में लोग एक ही सांस में बोल देते हैं आई लव गॉड एंड आई लव माई हैमबर्गर ऑल्सो, और आई लव गॉड एंड आई लव माई डॉग ऑल्सो। तो वही शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने कुत्ते के लिए भी और भगवान के लिए, परंतु नहीं, वो दिखने में एक जैसा दिख रहा होगा लेकिन बहुत परिवर्तन हो गया है किसके अंदर, अब दही के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, और वो दूध से परिवर्तित ये जो दही है वो क्या है, कृष्ण प्रेम से परिवर्तित काम वासना। तो अब प्रश्न ये है कि क्या अपने आप दूध सुबह आप देखो तो दही में आ जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है अपने आप, नहीं उसके अंदर खटाई डालनी पड़ती है। तो उदाहरण दिया गया है वो क्या है, रजोगुण। तो रजोगुण जो है वो एकदम इसको कहते हैं कि घुसपैठिया है, घुसपैठिया घुस जाता है, और ऐसे घुस जाता है समझ में नहीं आता, जैसे कि वो खटाई आप डालते हो कहां पर वो खटाई गई, इतनी सी खटाई डालने की जरूरत पड़ती है, और इतना बड़ा दूध का पतीला पूरा दही बन गया, पूरा जम गया। जैसे आजकल बोलते हैं ना दिमाग का भी, तो रजोगुण यही करता है, किसी के अंदर वो घुस जाता है तो उसके दिमाग का भी जमा देता है। तो वो खटाई के वजह से उसको विकार भी बोलते हैं, उस विकार के वजह से वही कृष्ण प्रेम, अब देखिए उसकी इंटेंसिटी वही रहती है, उसको कहीं बाहर से नहीं डाला गया, उसी के अंदर से उसको बनाया गया। तो ये काम वासना कृष्ण प्रेम का ही एक विकृत स्वरूप है, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए ये हम इसलिए उदाहरण ले रहे हैं कि इससे हमको समझ में आए कि कैसे हमारे दूध का दही बनता है, बस ये समझ लीजिए। हाँ, अब चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि कृष्ण प्रेम और काम वासना में अंतर क्या है। तो उदाहरण सोने का है और लोहे का है, बहुत सुंदर उदाहरण है कि दोनों मेटल्स हैं, दोनों धातु हैं, परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे बताइए, क्या अंतर है? हाँ, दिखने में क्या, सोना ना, सोना मूल्यवान है। आप कभी गए त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी के दुकान में और वहां लोगों को दिखाया? इस बार मैंने है ना हमारे बेटे की शादी के लिए सोने का हार लिया, नहीं लोहे का हार लिया। आपको आश्चर्य नहीं हुआ ना, सोने का हार तो सभी लेते हैं, लोहे का हार लिया। इस बार मैंने थोड़ा चेंज के लिए लोहे का हार। तो देखिए सुनार और लोहार दोनों में भी बहुत अंतर होता है ना। तो यहां पर आप लोग सब जानते हैं कि दोनों का मूल्य क्या है। सोना आपको यदि खरीदना है तो आपको बहुत पैसे आपको खरीदने के लिए चाहिए, इतना सा सोना कितने में बिकता है ना, लाखों में हो, इतने से ग्राम का, 24 कैरेट का हो। और लोहा जो है आप जाओ भंगार मार्केट में कहीं कहीं से भी, लोहा तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो काम वासना लोहे के समान है। अच्छा ये ध्यान में रखना एग्जाम्पल में, ये इंपॉर्टेंट है कि काम वासना वो लोहे के समान है। इस संसार में सब जगह पर, यहां वहां जहां कहीं पर भी जाओ सब जगह पर, इसलिए इस भौतिक संसार को एक और नाम दिया गया है, मैथुन आगार। जैसे होता है ना बस डिपो को क्या बोलते हैं, बस आगार। तो बस डिपो में क्या सब जगह क्या दिखता है आपको, बस ही बस, लाल डिब्बा, सब जगह लाल डिब्बा। वैसे ही इस भौतिक संसार को नाम दिया गया है मैथुन आगार, सब जगह पर वही चल रहा है। तो इसलिए लोहे के समान है और उसका कोई मूल्य नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, और दोनों धातु हैं, दोनों के अंदर तीव्रता है, दोनों के अंदर तीव्रता है, काम वासना के अंदर और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है दोनों के अंदर तीव्रता है। जैसे दोनों धातु हैं लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर, एक है भगवान श्री कृष्ण के लिए शुद्ध भावना से किया गया और एक है इस भौतिक संसार में केवल अशुद्ध भावना से इंद्रिय भोग के लिए। तो इससे समझ में आता है कि दोनों में अंतर क्या है। अब क्रोध का एक और नाम है कामानुज। जैसे होते हैं ना कईयों के घरेलू नाम होते हैं, निक नेम्स होते हैं, वैसे क्रोध का ये घरेलू नाम है। काम का अनुज, काम का छोटा भाई, जैसे लक्ष्मण, इनका एक नाम है रामानुज, प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई अनुज, वो हो गए रामानुज। तो वैसे यहां पर कामानुज, काम का छोटा भाई क्रोध। तो रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम से उत्पन्न होता है क्रोध। तो यहां पर हम इस प्रकार से समझेंगे कि दोनों मिलकर, दोनों का जो भाईचारा चल रहा है, किसका, काम का और क्रोध का, दोनों को भाई भी बताया गया है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर, क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस होता है ना, ब्रदर्स का बिजनेस होता है एक साथ, हाँ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर है ये, काम और क्रोध का जॉइंट वेंचर। तो हम कुछ उदाहरण लेंगे शास्त्रों से कि कैसे भाई भाई मिलकर भाईचारा कर कर उन्होंने पापम चरति पुरुष चालू किया इस क्लब को। तो सबसे पहले ये दो भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, कि दोनों मिलकर उन्होंने दहशत फैलाई इस पूरी सृष्टि में। पहले हिरण्याक्ष ने, और हिरण्याक्ष ने तो पूरे पृथ्वी को गर्भोदक समुद्र में फेंक दिया, और जब फिर वराह भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ और फिर वो मारा गया, तो हिरण्यकशिपु क्रोध में आ गया। और देखिए उनको नाम भी किस प्रकार के मिले हुए थे। हिरण्याक्ष का अर्थ है, हिरण्य का अर्थ है सोना, और अक्ष का अर्थ है हर समय वो कहां पर सोना है वो ढूंढता रहता था, कि कहां धन संपत्ति है उसको ढूंढता रहता। तो आजकल भी आप देखो लोग जो केवल कहां पैसा है, कहां पैसा है, उनका भी एक और नाम क्या हो सकता है, हिरण्याक्ष, कि कहां पैसा है, कहां पैसा है। और फिर हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का अर्थ है कि जो एकदम, कशिपु का अर्थ है सॉफ्ट बेडी अर्थात मैथुन सुख, और हिरण्य का अर्थ है ऑपुलेंस, कि जिसके पीछे भाग रहा है वो। तो ये दोनों भाई मिलकर, देखिए उन्होंने, हालांकि हमको एक दृष्टिकोण से शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनके वजह से वराहदेव और नरसिंह भगवान प्रकट हुए, परंतु हम ये नहीं चाहते कि इस प्रकार से हम अपना व्यवहार करें कि भगवान इस रूप में आए अपना दर्शन देने के लिए। तो दोनों दोनों भाई ने मिलकर जो पाप कृत्य किए, रावण और कुंभकर्ण, ये एक और जोड़ी, तो ये अलग अलग जोड़ी हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है इनका, कि इन्होंने अपने कर्मों के द्वारा, अपने पापों के द्वारा, उन्होंने इस पूरे संसार में काम और क्रोध को कैसे फैलाया। फिर उदाहरण है दुर्योधन और दुशासन का, और कलयुग में उदाहरण है जगाई और मधाई। तो ये बताया गया है कि सत्युग में जो पापी और जो, या ये कहेंगे जो राक्षस और देवता, वो अलग अलग लोकों में रहा करते थे। राक्षसों का लोक अलग था, उनका प्लैनेट अलग था, और देवताओं का प्लैनेट अलग था। फिर उसके अगला युग आया त्रेता युग, तो त्रेता युग में वो एक ही प्लैनेट पर आ गए, कौन, राक्षस और देवता एक ही प्लैनेट पर आ गए, या ये कहेंगे कि पाप और पुण्य एक ही प्लैनेट पे आ गए। और द्वापर युग में वो एक ही परिवार में आ गए, जैसे कौरव और पांडव एक ही परिवार में आ गए, राक्षस और देवता एक ही परिवार। और कलयुग में एक ही हृदय में एक ही हृदय में हमारे डेमोनियक क्वालिटीज भी हैं और डिवाइन क्वालिटीज भी हैं, एक ही हृदय के अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर ये दोनों है। और कौन? पापम चरति पुरुष, मनुष्यों के अंदर। तो ये काम और कामानुज। तो अब हम अगर विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल लें इसके कनेक्शन में, तो विश्वामित्र मुनि की कहानी हम जानते हैं कि वो अपने ध्यान में लगे हुए थे और जब मेनका से प्रभावित होकर वो अपना ध्यान भंग किया उन्होंने और अपने साधना से वो च्युत हो गए। और फिर प्रसिद्ध है ना विश्वामित्र मुनि मेनका। तो विश्वामित्र मुनि अब फिर शकुंतला पैदा हो गई, विश्वामित्र मुनि ध्यान साधना छोड़कर उससे विवाह कर लिया। उसके बाद में उनको ध्यान में, अरे क्या किया मैंने, ये क्या हो गया। तब विश्वामित्र मुनि वापस गए ध्यान साधना करने के लिए, और अब इंद्रदेव ने एक और अप्सरा को भेजा, रंभा। पहले मेनका, अब रंभा। तो विश्वामित्र मुनि समझ गए अब मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला। तो विश्वामित्र मुनि को क्रोध आया ब्रह्मा के ऊपर। पहले मेनका से प्यार, रंभा के ऊपर क्रोध। तो उसको प्यार नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, काम। तो पहले काम और फिर क्रोध। तो भगवान आज के श्लोक में क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि जैसे विश्वामित्र मुनि पहले काम वासना के अधीन आए और उसके पश्चात क्रोध के अधीन आए, और ये दोनों रजोगुण के ही संतति हैं, रजोगुण से उत्पन्न ये दोनों, काम एष क्रोध एष। तो विश्वामित्र मुनि के उदाहरण से हमें समझ में आता है कि कैसे यदि कोई काम वासना पर विजय भी प्राप्त करने की कोशिश करता है तो क्रोध के चंगुल में आ जाता है। तो दोनों ट्रैप वो एक साथ ही छोड़ते हैं दोनों भाई। अब ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द भगवान ने आज के श्लोक में इस्तेमाल किया है कि ये जो काम और क्रोध है ये महाशनो, या हम केवल काम वासना को लें क्योंकि क्रोध तो है वो तो उसके साथ ही रहता है हर समय। तो भगवान आगे के भी श्लोकों में केवल काम वासना के विषय में ही बोलने वाले हैं। तो महाअशन का अर्थ है अत्यधिक, महा का अर्थ है अत्यधिक, जैसे महामंत्र जो बहुत बड़ा हो। हर समय महाशब्द इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एक था कोला, फिर हुआ महाकोला, था ना ऐसा कुछ, महाकोला, बड़ा वाला कोला। तो महाअशन, अशन का अर्थ है अत्यधिक खाने वाला हो गया, महाअशन अत्यधिक खाने वाला। और महाशनों का अर्थ पूरा हो गया कभी न मिटने वाली भूख। तो अत्यधिक खाने वाला जो है व्यक्ति, और कितना अत्यधिक, कई बार हमको अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति इस प्रकार का लगता है कि दिखने में लग रहा है कि बहुत अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति होगा ये महाशनो। परंतु काम वासना, भगवान जो बोल रहे हैं कि वो काम वासना किस प्रकार से महाशनो है कि जिसकी भूख कभी मिटती नहीं। अब देखिए इस संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा पेटू हो, कितना भी बड़ा वो खाने वाला हो, इंग्लिश में जिसको ग्लटन बोलते हैं, लेकिन एक समय तो आएगा जब वो बोलेगा बस कर, अब नहीं खाया जाता क्योंकि हम सीमित हैं। परंतु यहां पर भगवान बता रहे हैं कभी न मिटने वाली भूख। जैसे एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कि बीरबल बताओ तुमने क्या देखा है, मैं और मेरी बीवी हम में से ज्यादा कौन खाता है। तो बीरबल तो हर समय उत्तर तुरंत तो देते नहीं थे। तो बीरबल ने कहा वो तो समय बताएगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गर्मियों का मौसम था, आम का मौसम चल रहा था, तो आम खा रहे थे दोनों, अकबर और अकबर की बीवी दोनों आम खा रहे थे। तो बीरबल वो प्रवेश किए, तो अकबर ने सोचा अरे बर, अभी बीरबल तो देख लेगा तो मुझे आम इतने पसंद है, मैं तो एक के बाद एक खाया जा रहा हूँ यहाँ। तो अभी आम कैसे खाया जाता है, उसकी जो गुठलियां हैं वो चूस कर और जो उसके छिलके हैं वो चूस कर नीचे फेंके जाते। तो अकबर ने अपने प्लेट की सारी गुठलियां और सारे छिलके अपनी बीवी की प्लेट में डाल दिए। ताकि अकबर, अभी सामने प्लेट में अगर इतने छिलके इतनी गुठलियां कोई देखेगा तो क्या समझेगा, कितना खाती है। तब उसको समझ में आया नहीं कि मेरे पति ने किया क्या। तो बीरबल आए, बीरबल ने देखा, बीरबल समझ गए, वो इतने बेवकूफ नहीं थे, वो समझ गए कि यहां पर क्या चल रहा है, क्या झोल है यहां पर। तो उन्होंने बादशाह अकबर से कहा कि आज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और आपके प्रश्न का उत्तर तो अकबर सोचे हाँ देख रहा है ना सामने, अरे क्या है, तो मैं भी उत्तर दे दूंगा। नहीं, प्रश्न का उत्तर आपका ये है कि आप आपकी बीवी से ज्यादा खाते हो। बोला कैसे, क्योंकि आपने तो आपकी गुठलियां और छिलके भी नहीं छोड़े। आपने तो वो भी निगल लिया अंदर। तो गुठलियां और छिलके भी न छोड़ना, इसको बोलते हैं महाशनो, कि सब कुछ, वोरेशियस ईटर जिसको कहते हैं। तो ये है काम वासना, महाशनो। अब इसका कनेक्शन है आगे के भी शब्दों के साथ, तो वह हम देखेंगे। अब यदि हम पेट की जो भूख होती है, एक है काम वासना की भूख और एक है पेट की भूख, तो यदि पेट की भूख को हम लें तो पेट की भूख का समाधान कब कब कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले यदि पर्याप्त भोजन हो जाए, जैसे हो सकता है कि अभी आपको भूख लग रही हो, पता नहीं यहां पे तो बाहर स्टॉल वॉल भी लगा रखा है आज, तो आज श्लोक पता था शायद, क्या स्टॉल जिन्होंने लगाया उनको। तो जब हमको भूख लगती है तो पर्याप्त भोजन प्राप्त हो जाए तो पेट की भूख शांत हो जाए। हाँ, जिह्वा की भूख शांत नहीं होती, वो कभी वो हर समय लपलपाती रहती, लेकिन पेट उसका एक स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके बाद में वो पेट भी चिल्लाने लगता है कि बस करो बस करो। तो पर्याप्त भोजन प्राप्त हो जाए तो भूख का समाधान हो सकता है। दूसरा तरीका, कोई निर्धारित समय होता है भूख लगने का, मतलब शास्त्रों के अनुसार भूख का निर्धारित समय होता है, है ना, कि पता नहीं आजकल तो रात के 2 बजे भी, मैं एक वो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोग्राम करता था, तो वहां पर एक चाय वाला वो अपने सारे वो स्नैक्स वैक्स के साथ उस हॉस्टल में रात के 1 बजे जाता था। वो अलग बात थी कि क्योंकि वो कस्टमर सब जगे हुए रहते थे, पढ़ाई कर रहे होते थे, इसलिए उसको वहां पे उसका सेल मिलता था। बट जनरली हम देखते हैं कि हमारे जो शारीरिक भूख होती है उसका एक समय होता है, एक समय पर हमारा शरीर वो भूखा होने लगता है और कुछ मांगने लगता है। तो निर्धारित समय पर, ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि अभी हम काम वासना को जो भगवान ने महाशनो कहा है कि उसकी भूख क्या है, उसको कितना भी डालो आप, काम वासना को कितना भी आप भोजन डालो, उसका भोजन क्या है, विषय भोग, कितना भी विषय भोग उसको दे दो, कितने जन्म जन्मांतर तक। जैसे एक बार वैकुंठ लोग में नारायण वो अपने अनंत शेष पर लेटे हुए नीचे देख रहे थे, भौतिक संसार में देख रहे थे, ऐसे थोड़ा झांक कर देख रहे थे, लेटे हुए थे, थोड़ा झांक कर नीचे देख रहे, तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और लक्ष्मी देवी जो उनके चरण का मसाज कर रही थी, मालिश कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि अचानक हंस क्यों रहे हैं। तो पूछा कि क्यों हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने देखा कि वो मैं दो चींटियों को देख रहा हूं। ये दो चींटियां ये 72 बार एक साथ पति पत्नी बने हुए हैं, अभी तक छोड़े नहीं एक दूसरे को। 72 times they were together enjoying sex life and still they are together। तो भगवान उसको देख के हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि कितना पावरफुल है, हाउ पावरफुल इज दिस। तो उसको कितना भी भोजन डालते रहो, इसलिए उदाहरण आगे के श्लोकों में हम उस उदाहरण को लेंगे कि काम वासना की तुलना अग्नि से की गई है। तो अग्नि में आप कितना भी ईंधन डालो, और ईंधन क्या है, विषय भोग, कितना भी विषय भोग, कितना भी ईंधन डालो ये सोचते हुए कि अरे कभी ना कभी तो ये अग्नि शांत होगी, अरे आप जितना पेट्रोल डालोगे उतनी अग्नि वो और भड़कती रहेगी। तो वो है, उसको चाहे, उसके लिए कोई पर्याप्त भोजन नहीं है, जैसे पेट के लिए पर्याप्त भोजन है लेकिन उसके लिए नहीं है, इसलिए महाशनो, उसके लिए कोई निर्धारित समय भी नहीं है। पेट के लिए कोई निर्धारित समय है लेकिन उसके लिए कोई निर्धारित समय भी नहीं है। और कई बार वृद्धावस्था में जठराग्नि मंद होती जाती है, मंद अग्नि हो जाती है, फिर वो इसलिए भूख कम लगने लगती है, चिंता ज्यादा सताती है, भूख कम लगने लगती है। लेकिन काम वासना को कोई वृद्धावस्था नहीं सता सकती, कोई ओल्ड एज, कोई वृद्धावस्था किसी काम वासना को नहीं सता सकती। जैसे वही श्रील प्रभुपाद वो कथा सुनाते थे कि एक राजा ने पूछा कि ये काम वासना व्यक्ति को कौन सी आयु तक सताती, हो सकता है शायद अकबर बीरबल की कहानी हो। तो मंत्री ने कहा कि मरते दम तक। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मंत्री राजा को ले गया, एक व्यक्ति अपने 90 वर्ष की उम्र में मरण शैया पर लेटा हुआ, तो मंत्री अपने राजा को कहता है आपकी जो पुत्री है उसको साथ में लेकर चलो। तो ये मर रहा है, अब एक टांग कब्र में है, लेकिन जैसे ही राजा प्रवेश करता है अपनी जवान लड़की के साथ, तो इसकी नजर ना तो मंत्री के पास, ना डॉक्टर के पास, ना राजा के पास, सीधा उधर। तो मंत्री राजा को ऐसे कहता है देख लिया। जैसे एक बार एक परिवार में एक उनकी बूढ़ी चाची थी, तो हर समय उसकी जो भतीजी थी ना उसको बोलती रहती थी, किसकी भी शादी होती थी तो उसको ऐसे करके बोलती थी, अगली बारी तेरी है, अगली बारी तेरी है। तो एक बार हुआ क्या कि उनके परिवार में उनके दादाजी गुजर गए, तो इसने चाची को ऐसे किया, अगली बारी। तो वृद्धावस्था, अभी हाल ही में मेरे कुछ एयरफोर्स के मित्र आए थे मिलने के लिए, तो अब वो लोग अपने अपने इसमें फील्ड में अभी वो पायलट्स हैं, तो उसमें से वो एक बता रहा था कि उनकी उसकी जो धर्मपत्नी है वो ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। बोलता है कि मेरी पत्नी जब भी मेरा कोई फ्लाइट टिकट बुक करती है, वो खुद पायलट है लेकिन उसकी फ्लाइट टिकट उसकी पत्नी बुक करती है, कि जो भी डोमेस्टिक एयरलाइन से, तो हर समय एयर इंडिया बुक करती है। तो मैंने कहा एयर इंडिया क्यों? लाइक क्योंकि एयर इंडिया का स्लोगन है वी गिव मदरली ट्रीटमेंट। व्हाई मदरली ट्रीटमेंट? बिकॉज ऑल द एयर होस्टेस आर अबव 50। तो इसलिए वो बोल रहा था कि मेरी पत्नी बोलती है जैसा जाएगा वैसा ही आएगा। तो ये बोला कि एयर इंडिया का अनुभव इसका ये रहा है कि कि एयर इंडिया में आप गजल गाते हुए अंदर जाते हो, भजन गाते हो बाहर आते हो। तो मैंने इसको कहा कि सही बात है, जब ऊपर जाता है तो भजन ही काम आता है। तो उसके साथ एक और मित्र था, तो वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। तो बोल रहा था कि आजकल वो दिल्ली से बॉम्बे आया, बोला दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट का रेट आजकल 5,000 5,500 ये सब रेट चल रहे हैं, इतनी महंगी फ्लाइट्स हो रही। तो ये उसको कहता है कि मेरे को एक बात बता, तू अपने बीवी को घर खर्च कितना देता है हर महीना? तो उसने कहा 50,000 देता हूं। और कितनी बार तेरी बीवी ने मुस्कुरा कर तेरे को नाश्ता परोसा है? अरे इधर 5,000 में पराई लुगाई तेरे को मुस्कुरा कर नाश्ता खिला रही है। तो कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है? तो इसलिए भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि महाशनों की ये महाआसन है, इसकी भूख ऐसी है कभी न मिटने वाली भूख, चाहे वो जेट एयरवेज हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे कोई भी एयरलाइंस हो। तो अब महाशनों के बाद भगवान ने महापापमा, तो इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, महाशनों से समझ में आ गया। महापापमा मतलब महान पाप में लगाने वाला, ये ऐसा शत्रु या ऐसा वैरी है जो महापाप में व्यक्ति को लगाता है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 स्तंभ हैं अधर्म के और 4 स्तंभ हैं धर्म के। तो ये हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कि मांसाहार जो है, मीट ईटिंग इज द पिलर ऑन विच अधर्म इज स्टैंडिंग, एंड एज अगेंस्ट दैट द पिलर ऑन विच धर्म इज स्टैंडिंग इज मर्सी। सो व्हेन वन एंगेजेस इन मीट ईटिंग, दैट पिलर डिस्ट्रॉयज वन पिलर ऑफ धर्म। सो मीट ईटिंग डिस्ट्रॉयज द पिलर ऑफ मर्सी। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक अधर्म का एक महल है और एक धर्म का महल है, तो 4 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। तो अधर्म का ये एक स्तंभ धर्म के ये एक स्तंभ को मारता है या गिराता है। तो मीट ईटिंग डिस्ट्रॉयज द पिलर ऑफ मर्सी। गैम्बलिंग, दिस सिन, दिस पाप डिस्ट्रॉयज द पिलर ऑफ ट्रुथफुलनेस। इंटॉक्सिकेशन, दिस डिस्ट्रॉयज द पिलर ऑफ ऑस्टेरिटी। एंड इलिसिट सेक्स डिस्ट्रॉयज द पिलर ऑफ क्लीनलीनेस। यहां पर ये जो क्लीनलीनेस है या स्वच्छता, ये स्वच्छता किसके विषय में कहा गया है? आंतरिक, आंतरिक स्वच्छता। तो काम वासना से जीव का हृदय मलिन होता है, और हृदय मलिन होने के वजह से सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक बार राधानाथ स्वामी, इनको मेनका गांधी मिली, तो मेनका गांधी ने राधानाथ स्वामी इनको पूछा कि व्हाट आर यू हरे कृष्णा डूइंग फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द इकोलॉजी? तो महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया उनको। महाराज ने उनको कहा, वी आर वर्किंग ऑन टू प्यूरिफाई द इकोलॉजी ऑफ द हार्ट, वी आर वर्किंग ऑन टू प्यूरिफाई द एनवायरमेंट ऑफ द हार्ट। सो द एनवायरमेंट ऑफ द हार्ट बिकम्स पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ लस्ट। And herein we are not talking of lust just on a very physical level, not just the carnal pleasure. We are talking of lust for anything. Lust takes its form for money also, for name, fame, you know, for prestige, envy and all this. Everything, lust has its expansions in all these different ways. तो ये जो हम दिखा रहे हैं चार स्तंभ धर्म के और अधर्म के, तो इससे ये समझना है कि हम इस भौतिक संसार में हैं क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है. और वो जो स्वच्छता या क्लीनलीनेस की बात यहां पर हम बोल रहे हैं, वो उसकी जड़ कहां पर है, यहां पर जो बताया गया इलिसिट सेक्स. तो ये जो चार नियम प्रभुपाद ने दिए हैं, ये चार नियम सबसे पहले हमको अधर्म के महल से बाहर निकालते हैं. बस दीज फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स गिवन बाय प्रभुपाद, लाइक नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, दीज फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, दे सिंपली टेक अस आउट ऑफ द हाउस ऑफ अधर्म. दैट्स इट. उसके बाद में फिर हमको ये सब का पालन करना है ताकि हम धर्म के घर में प्रवेश कर सकें. तो यह वैरिणम, अब ये यहां पर आप देख रहे हो कि इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा शत्रु. तो यदि मैं आपको यह प्रश्न पूछूं कि शत्रु के यदि अलग अलग रूप हो तो सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है, किस रूप में आ सकता है सबसे बड़ा शत्रु? हाँ, सबसे बड़ा शत्रु उसको कहा जाता है जो आपके मित्र के रूप में आए, जो आपका सुहृद, आपका मित्र, आपका हितचिंतक बनकर आए, वो सबसे बड़ा शत्रु है. अगर शत्रु सामने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा है कि हाँ मैं शत्रु हूं, चल मेरे साथ युद्ध कर, तो आपको समझ में तो आता है ये शत्रु है. परंतु यदि कोई इंडियन आर्मी में भर्ती होकर इंडियन आर्मी को खत्म कर रहा है, इसलिए ये जो एड्स का वायरस है इसको इतना बड़ा शत्रु क्यों बताया गया है? क्योंकि ये हमारे ही शरीर में प्रवेश कर, ये वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर मनुष्य की ही शक्ति को यूज कर उसको खत्म करता है, उसके इम्यून सिस्टम को यूज कर उसी को खत्म करता है. वो वायरस अंदर जाकर उस मनुष्य के इम्यून सिस्टम से अपनी आर्मी डेवलप करता है. तो इसलिए सबसे बड़ा शत्रु काम वासना को भगवान यहां पर बोल रहे हैं. क्यों? महाशत्रु बोल रहे हैं, जैसे महाशनो, महापापमा, महाशत्रु, क्योंकि ये सारे बद्ध जीवों का मित्र बनकर बैठा हुआ है सबके हृदयों में. और सबको क्या लगता है, ये काम वासना के वजह से ही तो मैं इतने आनंद में हूं, इसके वजह से ही तो मुझे इतना सुख मिल रहा है. तो सोचिए कि कोई यदि अपने शत्रु को रोज दिन रात खिलाए पिलाए नहलाए धोलाए अपने घर में, और ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो धीरे 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 उसको खत्म कर रहा है या उसके धन को लूट रहा है, जो वास्तविक उसका कृष्ण प्रेम धन है उसको लूट रहा है. तो इसलिए यह वैरिणाम, इसलिए इसको महाशत्रु भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में. क्यों? क्योंकि वो पाप करता नहीं, करवाता है. दिस लस्ट इंड्यूसेस वन इनटू सिन, करवाता है ये पाप. और उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? उस कामुक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है उसका परिणाम. तो इसलिए जब शत्रु प्रहार कर रहा है और शत्रु इस प्रकार से प्रहार कर रहा है कि शत्रु के ऊपर कोई हानि कुछ नहीं हो रही, परंतु जो व्यक्ति है वही हर समय प्रहार खा खा कर उसका जीवन खत्म हो रहा है, इसलिए महाशत्रु बताया गया. तो अब जब भगवान ने आज के श्लोक में काम वासना को शत्रु कहा है या वैरिणम कहा है, तो हम देखें कि एक शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमारे शास्त्रों में चार नीतियां बताई गई हैं, कौन सी है चार नीतियां? साम, दान, दंड, भेद, ये चार नीतियां. तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चार नीतियों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले साम नीति। साम नीति किसे कहते हैं? जब आप शत्रु को कुछ समझाने की कोशिश करो, समझा बुझा कर, अरे भैया क्यों तू लड़ाई कर रहा है, तू भी थोड़ा ले ले, मैं भी थोड़ा प्रेम से रहते हैं, क्यों लड़ाई करते हैं? उसको अच्छी शिक्षा। तो यहां पर यह बताया गया है कि काम वासना को यदि आप अच्छी शिक्षा देने का भी प्रयास करो तो उसे वो अच्छी शिक्षा समझ में नहीं आती, क्योंकि जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि उपदेशाणाम मूर्खाणाम प्रकोपाय न विद्यते, कि यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को आप उपदेश देने का कोशिश करोगे तो वो उल्टा कुत्ते की तरह आपके ऊपर भौंकेगा। तो ये शिक्षा देने से, जैसे कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम केवल जो कर्मकांडी काम है, ये यज्ञ, ये होम, ये उपवास, ये सब करने से हम वैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं। कई बार केवल इतना सब करने से आपके जो अंदर काम वासना है भौतिक जीव के अंदर, वो जड़ से नष्ट नहीं होती इससे। हाँ, पुण्य प्राप्त होगा परंतु वो काम वासना जड़ से नष्ट नहीं होती। इसलिए उसके लिए शुद्ध भक्ति में लगना, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना, जैसे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम जीवन पर नहीं उतारेंगे तो केवल ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार एक व्यक्ति, उसने एक तोती को पाल रखा था। अक्सर लोग किसको पालते हैं? तोते को। इसने तोती को पाल रखा था, फीमेल पैरेट को। तो उसे कहीं एक हफ्ते के लिए अपने गांव जाना पड़ा, तो उसने सोचा कि अभी इसको कौन खिलाएगा पिलाएगा, तो अपने दोस्त के पास गया। तो दोस्त को कहता है कि अरे मेरी तोती को एक हफ्ते तू रख लेगा? बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पिंजरे में दो तोते हैं, उसके उनके साथ ही। बोला क्या, दो तोतों के साथ एक तोती को? नहीं नहीं। बोला नहीं नहीं, अरे वो बहुत धार्मिक है वो लोग, वो एक तोता है वो रोज गीता का श्लोक बोलता है, और दूसरा तोता है वो नमाज पढ़ता है, तो दोनों तोते बहुत धार्मिक हैं। तो इसने छोड़ दिया। अब उस तोती को इसने वो पिंजड़े में रखा ये दो तोतों के साथ। तो जैसे ही ये तोती अब पिंजड़े में गई, तो एक तोता जो नमाज पढ़ रहा था, उसने अपना नमाज वमाज बंद किया और दूसरे को बोलता, अरे श्लोक वो बंद कर, हमारी दुआ कबूल हो गई। तो कई बार हमारी जो साम नीति है वो इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बताया गया है कि ये काम रूपी जो शत्रु है, इसके ऊपर ये साम नीति भी काम नहीं आएगी। और फिर दान नीति। दान नीति क्या है? कि उसको कुछ भोजन, वस्त्र, धन इत्यादि, परंतु हमने क्या देखा, महाशनो, कितना भी डालो, कितना भी दान देते रहो, इस काम वासना को ये कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। इसलिए दान नीति भी इस शत्रु के ऊपर काम नहीं करेगी। भेद नीति। भेद नीति क्या है? कि उसके मित्रों में मतभेद करवा दो। लेकिन काम वासना वो ऐसी है कि वो काम वासना अपने किसी भी मित्रों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देती, या उसके मित्र वो कभी उसके शत्रु बन नहीं सकते, कितना भी मतभेद कराने की कोशिश करो। कि क्रोध, काम वासना के ऊपर क्रोध कभी नहीं करेगा। काम वासना को पूरा क्यों नहीं किया, उसके बदले उसके ओर से क्रोध करेगा। एंगर विल शो इट्स एंगर ऑन बिहाफ ऑफ लस्ट, नॉट ऑन लस्ट। तो इसलिए यह भी काम नहीं करता भेद नीति। परंतु दंड नीति, हां, इस काम के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो शक्ति द्वारा उसे वश में करना है। और कौन सी शक्ति? आज के श्लोक में जो भगवान ने कहा है कि इसकी उत्पत्ति का स्थान क्या है, रजोगुण। तो हमें इसकी उत्पत्ति के स्थान पर प्रहार करना है, अबॉर्शन। मतलब उस दृष्टिकोण से मत समझिए आप कि रजोगुण के ऊपर हमें प्रहार करना है। काम वासना पर प्रहार करने से कुछ नहीं होने वाला, हमको रजोगुण पर प्रहार करना है। और रजोगुण पर प्रहार करने के लिए गीता में भगवान कहते हैं सत्वगुण। कौन से शस्त्र से? सत्वगुण के शस्त्र से रजोगुण के ऊपर प्रभाव करना है। तो उद्गम स्थान वहां पर बंद करना है, तब जाकर इस काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस काम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण, कैसे काम शत्रु ने इन व्यक्तियों को पाप में लगाया। तो सबसे पहला उदाहरण हमारे भागवत के फेमस अजामिल, कि अजामिल ये एक शुद्ध ब्राह्मण थे, परंतु काम वासना के वशीभूत होकर इन्होंने वैश्या से विवाह किया, और उसके पश्चात उस वैश्या को मेंटेन करने के लिए इतने पाप कृत्य किए कि तीन तीन यमदूत को आना पड़ा ले जाने के लिए, और वो भी वहां पर रिकॉर्ड उनका मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इतने फास्ट पेस पर ये पाप कर रहे थे अजामिल। तो अजामिल का उदाहरण है कि कैसे काम वासना के वजह से अजामिल एक पापी बना। पद्म पुराण में एक और उदाहरण है, यह है राजा कुकद्रम। ये एक बहुत ही एक राजऋषि टाइप के राजा थे, बहुत ही आदर्श राजा थे, परंतु ये किसी स्त्री से आसक्त होने के पश्चात ये काम वासना के वशीभूत हो गए और इन्होंने इतने पाप करने शुरू किए, कि इनके मरने के पश्चात सारे जो ब्राह्मण थे उनके राज्य के, उनके यज्ञ इत्यादि रोक दिए, ब्राह्मणों का वध करना शुरू कर दिया, ये सब कुछ सारे अलग अलग प्रकार के जैसे अजामिल ने शुरू किए। तो पता लगा कि पद्म पुराण में एक कथा है कि एक कल्हा नाम की एक स्त्री थी, और वो अपने पति को छोड़कर वो किसी पर पुरुष का गमन किया करती थी, पर पुरुष के साथ संग किया करती थी। तो पद्म पुराण में वर्णन है कि ये राजा कुकद्रम और ये स्त्री कुल्हा, ये अपने पिछले जन्मों में वो एक साथ इस प्रकार की काम वासना में लगे रहते थे, तो उसके वजह से इस जन्म में भी वो काम शत्रु इनको छोड़ा नहीं, और फिर दोनों मरने के पश्चात भूत बन गए। वो राजा कुकद्रम भी भूत बन गए और ये भूतनी बन गई। तो यहां पर पद्म पुराण में बताया गया है कि काम शत्रु इतना शक्तिशाली कि भूत और भूतनी के योनि में भी ये काम वासना को छोड़े नहीं। अभी कोई इंद्रिया ही नहीं है, कोई शरीर ही नहीं है, लेकिन वो काम वासना इतनी प्रबल भूत की योनि में भी कि भूत की योनि में भी वो इस प्रकार से कुकर्म में लगते रहे। और एक तो स्वयं की काम वासना संतुष्ट करने में और दूसरों को अब परेशान करने में और पाप कृत्य करने में लगते रहे। तो इससे ये पद्म पुराण में उदाहरण दिया इन दोनों का कि कैसे ये जिसको इंग्लिश में कहते विशियस साइकिल, कि काम वासना के वजह से पाप और पाप के वजह से और काम वासना, फिर और पाप, फिर और काम वासना, इस प्रकार से ये बंधते गए, बंधते गए, बंधते गए। तो ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे जो आज भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि ये न केवल महाशन है बल्कि महापापमा है और महान शत्रु है। तो जब ऐसा भगवान ने भयावह आज का श्लोक बोला है अर्जुन को, तो अर्जुन थोड़ा घबरा रहे हैं अभी। तो भगवान आगे के श्लोक में आप थोड़ा और इसको विस्तार से समझाएंगे कि कैसे धीरे धीरे हम इसका स्वरूप जाने और इस पर विजय प्राप्त कर सकें। तो आज के श्लोक को हम बस अब दो स्लाइड में संक्षिप्त रूप से बताना चाहेंगे, ताकि जिसको हम कहेंगे टेक होम मैसेज, कि आपको याद रहे कि आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या बताना चाहे। तो काम वासना के विषय में भगवान ने बताया, क्या कहा, सबसे पहले जन्म स्थान क्या है। तो इसके द्वारा आपको ध्यान में रहेगा कि आज के श्लोक एक स्लाइड में कैसे समझा जाए। काम वासना का जन्म स्थान क्या है, काम वासना के कार्यकलाप क्या है, काम वासना करने से उसके परिणाम क्या होते हैं, और जीव के साथ इस काम वासना का संबंध क्या है। तो हम एक एक का उत्तर आप लोगों से जानना चाहेंगे। काम वासना का जन्म स्थान रजोगुण, काम वासना के कार्यकलाप महाशनो, खाते रहना हर समय, न मिटने वाली भूख, हर समय खाते रहना, वो है उसके कार्यकलाप। परिणाम क्या है, महापापमा, कि उसके वजह से व्यक्ति पाप में लगता रहता है। और जीव के साथ संबंध क्या है उसका, महाशत्रु। तो रजोगुण है जन्मस्थान, महाशनो है कार्यकलाप, महापापमा है परिणाम, और महाशत्रु है जीव के साथ इस काम वासना का संबंध। तो अर्जुन ने वो जो प्रश्न पिछले श्लोक में पूछा था कि अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजित, कि बिना इच्छा के और बल और शक्ति और गति के द्वारा कोई व्यक्ति पुरुष जो है मनुष्य पाप के लिए क्यों विवश होता है, क्यों प्रेरित होता है। तो भगवान ने आज के श्लोक से शुरुआत की है कि उसका जन्म स्थान जान लो, उसके कार्यकलाप जान लो, उसका इफेक्ट जान लो, और उसका जो रिलेशन है जीव के साथ वो जान लो। अब ये तो केवल शुरुआत है, अब अगले श्लोक में भगवान बताने वाले हैं कि यह जो काम शत्रु है ये कैसे ज्ञान को ढक देता है। और इसके अगले श्लोक में भगवान बताने वाले हैं कि न केवल साधारण बद्धजीवों का ज्ञान ढक लेता, बल्कि बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान ढक लेता ये। तो इसको तुम साधारण मत समझो हे अर्जुन। तो एक के बाद एक अब भगवान के जो श्लोक अंत तक, इस अध्याय के अंत तक, इसी काम शत्रु को समझाते हुए और कैसे हम इस पर विजय प्राप्त कर सकें, यही भगवान का विषय रहने वाला है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री प्रभुपाद की। ग्रंथ राज श्रीमद भगवद गीता की।